ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद प्रथम अध्याय 14 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे।
अतः अग्रे ऋषया कर्माणि इहन्ते अकर्म हेतवे इहमाना हि पुरुषः प्रायः अनिहं प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इहमान हि पुरुषा प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ति अकर्म हेतवे इह मानहे पुरुषा प्राप्ते अनिहा प्रपद्यते। अथाग्रे ऋषय कर्माणि अन्ते कर्म हेतवे यहमान हि पुरुषं प्रपद्यते। अथ अग्रे ऋषय कर्म हन्ते अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे यमान यहि पुरुषा हताग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे यमाहि पुरुषा
माताएं। हरे कृष्ण। शब्दार्थ
अतः अतएव अग्रे परम पारम में ऋषया सारे विद्वान ऋषियों या संत पुरुषों से
पुरुषों ने कर्माणि सकाम कर्म इहंते करते हैं, अकर्म कर्म फलों से मुक्ति, हेतवे के लिए इहमाना ऐसे कार्यों में लोग रहकर, सॉरी ऐसे कार्य में लगे रहकर ही निस्संदेह पुरुषा पुरुष प्राय सदा ही अनिहम कर्म से मुक्ति प्रपद्यते प्राप्त करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अतएव लोग को कर्म की ऐसी अवस्था तथा तक पहुंचने में समर्थ बनने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सब प्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्म को संपन्न करना आरंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल ना उत्पन्न करने वाले कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य अनुवाद दोहराइए। अतएव लोगों को कर्म की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्र अनुमोदित कर्म को संपन्न करना प्रारंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की वास्तविकता को, सॉरी मुक्ति के अवस्था को या कर्म फल ना उत्पन्न करने वाले कार्य की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य भगवद गीता 3:9 में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, यज्ञार्थ कर्मण्यत्रो लोकहम कर्म बंधना। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अर्थात कर्म मनुष्य को इस संसार में बंध देता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होते हैं, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा सकाम कर्म से समस्याएं ही उत्पन्न होती है। इसलिए सलाह दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावना में कार्य में लगे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ को भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में भगवान ही भोक्ता है, इसलिए यदि हम उनके तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। सुत गोस्वामी नमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया था अतः पुंसी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसः सनुसृष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो वह भगवान हरि का तोषण है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अपने वर्ग के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। सिद्धि संसिद्धि हरितोषण। कोई अकर्मण्य बनकर कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसे भगवान के प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेशानुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.12 में पुष्टि हुई है, निष्काम्यम मप्यच्युता भावम वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्ति होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। यदि वह अच्युत ईश्वर की धारणा से विहीन है, ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न करता हुआ एकमात्र ब्रह्म का ध्यान करते हुए निष्कर्म के ग्रहण करे, किंतु यह तब तक संभव है जब तक उसे परम ब्रह्म कृष्ण की अनुभूति न हो ले। यदि कृष्ण भावनामृत न हो तो कोई भी कर्म चाहे परोपकार ही हो, राजनीतिक या सामाजिक कर्म बंधन को ही उत्पन्न करता है। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है, तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, जो मनुष्य जीवन का सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवद गीता में कर्म योग की संस्तुति की गई है। आरुख्यम मुने जोगम कर्म कारणमुच्यते जोग रूढस्य तस्येव समह कारणमुच्यते। जो योग पद्धति में नवदीक्षित है उसे कि उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसे उसके लिए सभी भौतिक कर्म से विराम लेना ही साधन कहलाता है। फिर भी कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्तो मनसा स्मरण इंद्रियार्थ भी विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सूच्यते। जो इंद्रियों के तथा कर्म इंद्रियों के रोक लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय ही अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। भगवद गीता 3:6। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए वह कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे, उसे हरिदास ठाकुर जैसे महान पुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुकरण की निंदा करते हुए कहते हैं, दुष्टमान तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जन रे घरे तब हरि नाम केवल कई तब। मेरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, किंतु यह सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करे, तुम कृष्ण भावना भावित कर्म में लगे, इसके तुम धीरे धीरे इससे तुम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकोगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिते। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुर्विन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणाललिता श्रीविशाखानितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदां स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे अस्यात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी वैष्णव भक्तों को कृपा भिक्षा करते हुए मैं श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ प्रयास करूंगा बोलने के लिए, तो आप सभी वैष्णव आशीर्वाद करें जिससे मैं भागवतम के बारे में कुछ बता सकूं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में इस आठवें स्कंद जो मनु महाराज के बारे में बताया गया है, और यह श्लोक जो है मनु महाराज कहते हैं कि किस प्रकार जो साधु होते हैं उन्हें लोगों को सकाम कर्म में लगाना चाहिए। तो देखा जाए तो एक दृष्टि से वो प्रचार के ऊपर बल देते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार हमें जो बहुत से जैसे कि शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अनेक जन्म के बाद भगवद गीता में भी कहा गया है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमितिम सुमहात्म सुदुर्लभ। कि बहुत जन्म के बाद कि कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो इसलिए इस मनुष्य शरीर को ऐसे पशुतुल्य गवा देना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए भौतिक समाज में हम देखते हैं लोगों को ये ज्ञान नहीं है, तो लोग चार चीजों में लगे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये चारों चीज में लगे हैं, और ये जो कि मनुष्य को पशुतुल्य बनाता है। तो इसलिए भगवान हमें ये शास्त्र दिए हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। किस भौतिक संसार में हम सब माया वशीभूत होने के कारण हमारे अंदर स्वतः ज्ञान नहीं है कृष्ण के प्रति, तो इसलिए कृष्ण हमें कृपा करके इस शास्त्र को दिए, कृष्ण वेद पुराण दिए। तो दो प्रकार के शास्त्र होते हैं या भागवत होते हैं, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत। तो लोगों का स्वाभाविक मते ग्रंथ भागवत में नहीं लगता है। जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौनिताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसलिए स्वाभाविक मति ना होने के कारण ये जो व्यक्ति भागवत होते हैं उनका कर्तव्य बनता है, जो साधु होते हैं भगवान के भक्त होते हैं उनका कर्तव्य है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से विहीन है उसे भगवान की भक्ति तक लाने के लिए प्रयास किया जाए। तो इसलिए जैसे कोई पशु तुल्य जीवन यापन करता है तो उसको तुरंत हमें कृष्ण भक्ति में लाना बहुत कठिन हो सकता है, तो इसलिए उसको अलग अलग तौर तरीके से उनको लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को भक्ति का स्थापन कराने के लिए, अर्जुन को भक्ति मार्ग में बढ़ाने के लिए, ऐसे तो भक्त थे लेकिन उनको माध्यम बनाकर हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने पहले आत्मज्ञान दिए। आत्मज्ञान देकर उन्होंने द्वितीय अध्याय में शरीर और आत्मा का भेद बताए, तृतीय अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया, फिर चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय कृष्ण भावनामृत कर्म। हाँ, तो ऐसे उन्होंने बताया किस प्रकार कृष्ण भावना तक जाना है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को तीसरे अध्याय में जब कर्मयोग के बारे में बताया भगवान ने, तो यहाँ जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः अस्ति मनसा स्मरन् इन्द्रियाणि प्रमातिनि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभि विमूढात्मा मिथ्याचार सोच्यते। कहते हैं जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जैसा जिसका मन इंद्रिय बस इंद्रिया विषय का चिंतन करता रहता है वह निश्चय रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो व्यक्ति जब तक अपने इंद्रिय को वशीभूत करके और इसको कृष्ण भावनामृत नहीं करता है तब तक विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जस्य रसतस्य परम दृष्टान निवर्तन्ते। ऐसे उच्चतर विषय जब तक किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो निम्नतर विषय नहीं छोड़ सकता है। तो इसलिए हमें जो विषय है विषय के कारण विषय आसक्ति के कारण जीवात्मा कर्म करता है, कुछ विषय इच्छाएं हैं उसके लिए ही संसार में, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य में कि आज विश्व में सब सुख के लिए ही कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको सुख प्राप्त करने के लिए तरीका पता नहीं है, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से अपने, जैसे कि हम भौतिक संसार में कहते हैं कुछ लोगों को कहा जाए कि भक्ति करो या कुछ धार्मिक कार्य में उनको लगाने चाहते हैं तो क्या कहते हैं, उनका एक ही जवाब होता है कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। लेकिन वास्तविक में उन लोग वो सही कह रहे हैं लेकिन क्या कर्म पूजा है वो जानते नहीं। तो इसलिए ये साधु का काम होता है कि वो बताए लोगों को क्या कर्म करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ तात्पर्य के पहले ही प्रभुपाद तात्पर्य के पहले ही शुरू में लिखते हैं, यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकहम कर्म बंधना तदाथ कर्म कौन्तेय मुक्त संघस जायते मुक्त संघ समाचार। कोई व्यक्ति कर्म करता है तो जैसे कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, तो ये तीन प्रकार के कर्म होता है। तो व्यक्ति जब तक वास्तविक कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वो बंधन से मुक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कृष्ण भावनामृत कर्म करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक कोई भी कोई भौतिक संसार में कृष्ण भावना विहीन होकर वो कोई भी कर्म करे, चाहे वो पाप करे या पुण्य करे, वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य जब हुआ उस समय, उससे पहले आदित्य आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान को कि वो इस भौतिक संसार की स्थिति को देख के वो चिंतित होते हैं। और चैतन्य भागवत में वर्णन है, कहते हैं वहाँ के प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसारे कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहारे केही पापे केही पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नहीं जाते पाए भव रोग। ये कहते हैं कि जब आदित्य आचार्य प्रकट हुए वो देखे इस संसार में कि सब संसार में क्या है, कृष्ण भक्ति विहीन है लोग, और इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, कोई पाप के द्वारा विषय भोग कर रहा है तो कोई पुण्य के माध्यम से विषय भोग कर रहा है, लेकिन उनका ये दोनों कार्य का उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार हम विषय को भोग कर सके, किस प्रकार विषय ग्रहण कर सके। तो सबका मति जो है विषय में लगा हुआ है, तो इसके कारण उन्होंने चिंतित होकर भगवान को प्रार्थना की कि इन लोगों के उद्धार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रास्ता है तो वो है स्वयं भगवान यहाँ आकर। हाँ, वो कहते हैं कि आपनी श्री कृष्ण जदि करिने अवतार आपनी आचरी भक्ति करिन प्रचार, कि जब तक भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होकर इस शिक्षा नहीं देंगे तब तक इस जीव जगत में जीवों को उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए स्वयं महाप्रभु जब प्रकट हुए तो मैं रिजलनिस गौरगोविंद महाराज का इस श्लोक के ऊपर एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज कहते हैं इसलिए जो आचार्य होते हैं उनको पहले अपने आप को आचरण करना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन में उसको उनका आचार्य कहा गया है कि आचार करे न कहू न करे प्रचार करे न कहू न करे आचार प्रचार कर तुम्हें दुही कार्य तुम्हें आर्य तुम्हें जगतिर आचार्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी स्वयं महाप्रभु भी आचरण करके सिखाए। हाँ, जैसे महाप्रभु आए आपने करीनो भक्ति भावंगी कार आपने आचरी भक्ति सिखाबू सवार आपने ना कहले धर्म सिखाते न जा संबंध गीता भागवते गाय। स्वयं महाप्रभु किस लिए आए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, इसलिए उन्होंने पहले खुद आचरण किए। क्या आचरण किए, क्योंकि भगवान ने तो कृष्ण अवतार में उपदेश दे के गए हैं कि किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। सर्वधर्मम परित्यज मामेकम स्मरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये भगवद गीता के अंतिम अध्याय में ये भगवान की जो सार वस्तु दे दिया। लेकिन भगवान अपने धाम जाने के बाद वो सोचते हैं तो इसको मैं तो कह के आ गया लेकिन इसको करेंगे कौन, इसलिए खुद भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु फिर बहुत ही संसार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में और ये प्रचार करते हैं, तो किस प्रकार व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, इसलिए वो भक्त भाव अंगीकार किए और खुद भक्ति का आचरण किए और अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने सिखाए कि किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में बहुत से शिक्षाएं हैं, हमारे चैतन्य चरितामृत में बहुत शिक्षाएं मिलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पास सनातन गोस्वामी से अनेक, जैसे राय रामानंद को मिले, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को मिलने के बाद उन्होंने भक्ति को सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित किए। तो जैसे कि यहाँ कहा गया है कि यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कहते यह मुक्त संघ समाचार, कि यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्टि के लिए कर्म नहीं करते हैं तो वो हमारा बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि हम अगर भगवान की खुशी के लिए नहीं करते हैं, अपने खुशी के लिए करते हैं, अगर हम वो पाप करे या पुण्य करे वो दोनों ही बंधन का कारण है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीण पुण्य पुनः मत्त्य लोक विसंति, जब पुण्य खत्म होने पर फिर भौतिक संसार में आएंगे। अगर कोई पाप करता है नरक जा सकता है, लेकिन पुण्य करके अगर कोई ऊर्ध्व लोक में भी चला गया तो उसको फिर तो वापस आना पड़ता है। तो इसलिए जैसे कि तात्पर्य में अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए, और अनुवाद में भी इसके बारे में बताया गया है कि वो सभी कार्यकलाप से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत करना होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं होता है वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जैसे राय रामानंद संबंध में जो भी महाप्रभु राय रामानंद को मिलते हैं, महाप्रभु ने पुरी से निकले और पुरी से निकलकर उन्होंने कुर्म क्षेत्र होकर जुड़ा नरसिंह का दर्शन किए और जुड़ा नरसिंह का दर्शन करने के बाद उन्होंने गए गोदावरी के तट पर और राय रामानंद से मिले और वहां मिलने के बाद उन्होंने राय रामानंद से कृष्ण कथा के बारे में बताने के लिए उन्होंने उनको उत्सुक कराए, उनको कहें, तो राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने एक भक्ति की श्रेष्ठता को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा पहले कि साध्य के बारे में बताए, ठीक, क्योंकि महाप्रभु कहे पढ़े श्लोक साध्य र निर्णय राय कह सर्वधर्म चरणी विष्णु मुक्ति हय। तो चैतन्य महाप्रभु ने के तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, साध्य क्या है, व्यक्ति को इस संसार में भौतिक संसार में जीने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसका वास्तविक कार्य क्या है। तो वहां राय रामानंद कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति को एक ही कार्य है कि उसे विष्णु की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम चार्वता पुरुषेण परम पुना विष्णु आराधते पंचा पंथा नान्यम तत्र सकर्मण। ये जो विष्णु आराधना पंथा है इससे ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम चार्वता, तो उन्होंने वर्ण और आश्रम के बारे में आगे बताए। तो किस प्रकार, तो महाप्रभु जब ये कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति है ये कहा राय रामानंद ने, तो महाप्रभु कहते हैं आगे कहो आर, तो राय रामानंद कहते हैं राय कहे कृष्ण कृष्ण कर्म सर्व साध्य सार। पर आय रामानंद कहते हैं कि संसार में कृष्ण के लिए कर्म करना ये सर्व साध्य सार है, ये करना ही चाहिए कि कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। तो क्यों कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए? क्योंकि जब जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण के लिए करने से ही हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, तो ये कर्म को हमारे जो बंधन से कर्मणा गहना गति, तो कर्म के एक गहन गति है, इसको हमें पार कर हमें जाना है। क्योंकि अगर कर्म एक कर्म के बंधन से हम अगर मुक्त नहीं होते हैं तो इस भौतिक संसार को पार करके नहीं जा सकते। तो इसलिए राय रामानंद जब कहे कि एक कृष्ण कर्म अर्पणम, हाँ जैसे कि भगवद गीता में कहा गया जत करोषि जदत्नासी जत जुहोषि जदासियत यत तपस्यसि कौन्तेय तत करोषि मदर्पणम, हाँ कि हमें कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं करेंगे तो भगवद गीता में जैसे कहा गया है शुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधना संन्यास जोग विमुक्तात्मा, सॉरी संन्यास जोग विमुक्तात्मा विमुक्त माम उपास्यसि। अगर शुभ हो या अशुभ हो वो कर्म क्या है, ये कर्म बंधन उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं वो इस संसार से मुक्त पा सकता है। नहीं तो चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो वो बंधन का, दोनों ही बंधन का कारण। जैसे कि उदाहरण देते हैं, कोई लोहे का सिंकली में बांधे या सोने का सिंकली में बांधा जाए तो साकली एक ही तो है, बंधन तो एक ही है, चाहे लोहा हो सोना हो बंधन तो बंधन है। तो इसलिए संसार में हम किसी भी तरीके से कर्म करें अगर वो कृष्ण अर्पित नहीं है, कृष्ण अर्पण नहीं है, तो वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए हमें तो कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए। तो जैसे कि प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं, ते अतपुंसि दिगश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सनुष्टिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। के वर्णाश्रम धर्म का निष्कर्ष यह है कि हरितोषण होना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है सारी वर्णाश्रमी जदि कृष्ण नाई भजे सकर्म करिया से रौर पड़ी मजे। अगर कोई व्यक्ति चार ही धर्म को, अपने धर्म और आश्रम को कोई अच्छे ढंग से भी पालन करता है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण उचित कर्म करता है, क्षत्रिय अगर अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, वैश्य अपना वैश्य कर्म करता है, शूद्र अपना शूद्र कर्म करता है, हाँ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी व्रत को दृढ़ता से निभाता है, सन्यासी अपने धर्म को दृढ़ता से निभाता है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी वो नरक में जाकर उसको दंड प्राप्त करता है। क्योंकि इस जितने भी वर्णाश्रम धर्म है इसका अंतिम लक्ष्य जो है कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं कर्म करता है लेकिन स्वधर्म को दृढ़ता से पालन करता है तभी भी वो नरक जा सकता है। क्योंकि ये एताभ्याम सांख्य योगे न स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण स्तुति। एताभ्याम सांख्य योगे न, अरे जितने भी योग है उसको भी हम अच्छे से दृढ़ता से पालन करें, स्वधर्म और अपने स्वधर्म को, मनुष्य जन्म मिला है मनुष्य उचित कर्म करेंगे, या ब्राह्मण घर में जन्म लिए क्षत्रिय घर में या वैश्य घर में जन्म लिए उसका हम सही से पालन करेंगे, लेकिन पालन करने के बाद भी स्वधर्म परिनिष्ठया निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे लेकिन हमारा वास्तविक जन्म का ये अर्थ नहीं है कि हमको ये धर्म को ठीक ठीक से पालन करें। तो ऐसे तो पशु भी अपना धर्म को पालन करते हैं, मनुष्य तो पशु से भी गया गुजरे, हाँ जो पशु है अपना धर्म को, हम कितने बहुत से पशु है उनको देख सकते हो जीवन में, उनका धर्म है, उनके धर्म को ठीक खाते हैं करते हैं। जैसे उनको खाने के लिए कुछ दिया गया है, उनके जो आहार है वो खाते हैं। जैसे गाय घास खाता है, लेकिन वो अपना घास छोड़ के शेर की मांस में मुंह नहीं डालता है, लेकिन मनुष्य ऐसा पशु है वो सब में डालता है मुंह। हाँ, तो ऐसे अगर स्वधर्म करने से अगर कोई उद्धार प्राप्त कर सकता है तो पहले पशु लोग प्राप्त करेंगे, मनुष्य रह जाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो इस धर्म को पालन नहीं करता है ठीक ठीक। पशु तो अपने जो समय पे उनका संभोग करते हैं, उनके ऋतु आने से संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी करता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर इस बात पे जाए कि स्वधर्म कोई अगर करके भगवान को प्राप्त कर ले तो पशु भी प्राप्त कर सकता है। तो जन्म का हाँ, जन्म लाभ परम पुंसा, कि जन्म लाभ करने का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है, अंते नारायण स्तुति। तो अंत में भगवान, जब मृत्यु के समय में भगवान की स्मरण होना चाहिए। अगर अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा, यम यम वापि स्मरण भावम तेजयन्ते कलेवरम तम तमे वैते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। जैसे भगवान गीता में कहे कि मृत्यु के समय जो चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ेंगे उसी जगह को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम अगर मरते समय कुछ पशु का चिंतन किए, विषय भोग का चिंतन किए, फिर उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जीवन में स्वधर्म करना ही बड़ा चीज नहीं है, तो जीवन में कृष्ण भक्ति होना चाहिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो फिर भी ये कृष्ण अर्पित कर्म से भी श्रेष्ठ कुछ है। तो राय रामानंद को जब महाप्रभु ने इस संवाद पे पूछे, ये उन्होंने कहा कृष्ण अर्पित कर्म होना चाहिए, तो महाप्रभु उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, कहते हैं आगे कहो और। तो उन्होंने कहा आगे कहो और कहे तो उन्होंने वर्णाश्रम के बारे में बताए, फिर उन्होंने किस प्रकार वर्णाश्रम के माध्यम से भगवत प्राप्ति करना है उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, तो उससे भी महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए, तो महाप्रभु कहते हैं आगे कहो और। तो वो कहते हैं तो ज्ञान से रहित होकर भक्ति करना वो श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु को थोड़ा सा संतुष्ट हुआ, तो कहते हैं ये हो सकता है, लेकिन मैं इससे भी आगे सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर भक्ति के बारे में बताते हैं, प्रभु कहे वे हय आगे कह आर, राय कह प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। कहते हैं ये हो सकता है लेकिन इससे भी आगे कुछ बताओ। हाँ, राय रामानंद कहे प्रेम भक्ति जो है ये सभी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रेम में वे भी उन्होंने विभाजित किया कि प्रेम जो है जैसे रस है, पांच रस है। हाँ, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, ये पांच रस है। तो उन्होंने फिर दास्य रस के बारे में बताया कि दास बनकर भगवान की सेवा करना चाहिए। तो महाप्रभु कहे कि दास्य रस से रस उनको इतना ये हय कहे कि ये हो सकता है लेकिन आगे कहो। तो उन्होंने फिर साक्ष्य रस के बारे में बताए, ऐसे कहते कहते उन्होंने वात्सल्य रस के बारे में बताए प्रभु ने, क्योंकि शांत रस जो है भक्ति में शांत रस को कोई ग्रहण नहीं करता है। तो हमारे वैष्णव है ये चार रसों को प्राप्त करते हैं। तो शांत रस में जो है पेड़ पौधे पत्थर पर्वत ये सब होते हैं, लेकिन साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जब ये महाप्रभु ने वात्सल्य रस को वर्णन किए तो राय रामन ने वात्सल्य रस को वर्णन किए तो महाप्रभु कहे ये हय उत्तम, कि ये उत्तम है लेकिन मैं इससे भी कुछ अच्छा सुनना चाहता हूं और आगे कहो। तो राय रामानंद फिर माधुर्य रस के बारे में बताए कि किस प्रकार यहाँ मध्य राधार प्रेमा साध्य शिरोमणि जहार महिमा सर्व शास्त्री बाख्यानी। कहते इस माधुर्य प्रेम में भी सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ प्रेम है राधा रानी का, क्योंकि जब उन्होंने माधुर्य प्रेम के बारे में कंत भाव के बारे में राय रामानंद ने कहा तो महाप्रभु आगे को आर बोले। तो राय रामानंद कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये भौतिक संसार में हाँ इससे भी कोई आगे सुनना चाहता है। तो कहे कि महाप्रभु इससे आगे राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो किस प्रकार, क्योंकि राधा रानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की और वो सेवक है और वो अपने कार्य से साधन से भगवान को किस प्रकार संतुष्ट करना है वो सिखाए हैं। तो जितने भी कर्म है वो भगवान की प्रेममय कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो एक पद्यावली में एक श्लोक में कहा गया है कि ननो ननोपचारम कृतम पूजनम मार्त बंधे प्रेम प्रेमेणैव भक्त हृदयम सुखम विद्रतः सात जावत क्षुदास्ति जठरे जठरा जरठा पिपसा तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष पेय। तो कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति भूखा है तो भूखा व्यक्ति को अगर उसको खाद्य और पेय वस्तु दिया जाए जिस प्रकार वो संतुष्ट हो खुदा से तृप्त हो जाता है तुष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार कोई अगर ननु प्रचार कृतम पूजानम के कोई अगर भगवान की पूजा करता है बहुत विधि विधान से मम मार्तो बंद्यते और बहुत सुंदर से वंदना करता है लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग बाहर बहुत से लोग हैं वो अच्छा से भगवान की सेवा पूजा करते हैं लेकिन उनका वो पूजा का क्या भाव होता है, वो उनसे भगवान से कुछ पाना चाहते हैं इसलिए भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो इसके कारण वो अपने हृदय में कभी वो उस आध्यात्मिक सुख का अनुभूति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से प्रेम से कोई अगर भगवान की सेवा करता है, यहाँ कहते हैं प्रेम नैव भक्त हृदयम, जब प्रेम भक्त के हृदय में प्रकट होता है सुखम विद्रता स्यात् तभी वो सुख की अनुभूति कर पाता है। तो इसलिए जो सुख है वास्तविक जो भगवान की भक्ति में सुख है उसको तब तक हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे जब तक हम भगवान से प्रेममय सेवा नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा ही जो वास्तविक जीव को आनंद दे सकता है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनम रसवज्यसु रसपिष्य परम दृष्टान अनिवर्तन्ते, तो जब तक व्यक्ति विषय सुख को धारण किया है तब तक वो उसको उसमें आनंद लेगा जब तक वो प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रेम भक्ति जो है उसको अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसके हृदय में जो विषय के प्रति स्वाभाविक जो आकर्षण है वो नष्ट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कोई अगर भगवान कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है तो वो धीरे धीरे उसके हृदय में सभी प्रकार की कलमश नष्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली भगवत भक्ति में लग जाएगा। तो इसलिए जैसे यहाँ उदाहरण पद्यावली के श्लोक में उदाहरण देके भी कहते हैं कि जिस प्रकार जब तक व्यक्ति के भूख नहीं मिटता हाँ तब तक वो दुखी रहता है, तो उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में जो प्रेम प्राप्त करने की क्षुधा है वो जब तक तृप्त नहीं होता है तब तक हम अलग अलग विषय में उस प्रेम को ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए जो यहाँ कर्म अर्पण के बारे में बताया गया है या तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञार्थ कर्मण्यत्र लोकम कर्म बंधना सदा अर्थ कर्म तय मुक्त संग समाचार, ते भगवान को अर्पित कर्म, तो ये जो कनिष्ठ भक्त है उनके लिए लागू होता है। प्रभुपाद एक श्लोक में भी लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, जब नव दीक्षित यहाँ लिखते हैं ना, जैसे कर्म इंद्रिय संयम में यहाँ लिखते हैं, जो इंद्रियों के तथा इंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय का चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने को धोखा देता है। और आगे ये श्लोक में लिखते हैं, जो योगी पद्धति में नव दीक्षित है उसके लिए कर्म साधन है किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्म से विराम लेना चाहिए, साधन साधन कहलाता है। तो यहाँ लिखते हैं कि जो व्यक्ति जब तक वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है तब तक ये आश्रम वर्ण धर्म आश्रम धर्म कर्म अर्पण इस विधि को पालन करके उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो वास्तव में कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया है तो उसके लिए वो साधन नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति जैसे प्रभुपाद कहते हैं 100 रुपए के अंदर 1 रुपया है, 2 रुपया है, 50 रुपए भी है, तो इसलिए कृष्ण भक्ति के अंदर सब प्रकार की साधन है, तो इसलिए सर्व साधन सार है। तो इसलिए कहा जाता है, लास्ट एक कहकर मैं विराम दूंगा, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि धर्मचारी मध्य बहु कर्मनिष्ठ, जो जितने भी धर्म करते हैं उनमें से बहुत कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, तो ऐसे करोड़ कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के मध्य में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। और कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, करोड़ों ज्ञानियों के मध्य में एक मुक्त व्यक्ति होता है, लेकिन कोटि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो इसलिए जो मुक्ति प्राप्त कर लिया है तो मुक्ति से बढ़कर भी क्या है, भक्ति है। तो ये भक्ति जो है दुर्लभ है, दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो इसलिए हम सब सौभाग्यशाली है कि ये प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, हमें भक्ति दिए हैं, तो जो वास्तविक साधन को दिए हैं, जो वास्तविक हमें कृष्ण कर्मार्पण में लगाकर हमें शुद्ध कर रहे हैं। प्रभुपाद की जितने भी हमारे मंदिर के कार्यकलाप है वो हमारे हमें शुद्ध करने के लिए है, जो हम जितने भी कार्य करते हैं, तो इससे हम अंतिम में भगवत प्राप्त करने के लिए ही ये हमारा रास्ता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, किसका कुछ प्रश्न है, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा भक्ति मार्ग में कभी कभी उच्च स्तर भक्ति हो जाता है, कभी कभी निच स्तर हो जाता है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए और कैसा समाधान होना है, कैसे अग्रगति करना चाहिए इसमें?
क्या कभी उच्च
स्तर हो जाता है, कभी निम्न स्तर भी हो जाता है कृष्ण भक्ति मार्ग में, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए और कैसे अग्रगति करना चाहिए?
तो ये स्वाभाविक है, ये मन का स्वभाव है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है, लेकिन हमें जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें तात्पर्य में ही लिखे हैं कि गुरु के निर्देशन में हमें कार्य करना चाहिए, तो हमें गुरु है तो हमारे जो अथॉरिटी है उनके निर्देशन में काम करना चाहिए, तो हम इस प्रकार कार्य करने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी हम ऊपर है अभी फिर नीचे आ गए, तो इससे हम विचलित होकर अगर उसको ही छोड़ देंगे फिर हम पतन हो जाएगा। हाँ, फिर हम कृष्ण भक्ति को ही, अभी कम से कम हम यहाँ रह के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं। हमको जो हमें गुरु अथॉरिटी कहते हैं उसको करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
आपने एक जगह बताया कि स्वधर्म का ईमानदारी से पालन करने वाला चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो उसका भी उन्नति संभव नहीं है, तो इसका मतलब पशु तो स्वधर्म के पालन के अलावा कुछ जानता ही नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं करने के लिए, तो इसका मतलब पशु हमेशा पशु योनि में रहेगा। और दूसरा कि अर्जुन ने भी तो स्वधर्म पालन ही किया कृष्ण की प्रेरणा से, अर्जुन ने एक्स्ट्रा क्या किया था, स्वधर्म का ही पालन करवाया कृष्ण ने उनको, वही तो याद दिलाया उनको।
अर्जुन ने स्वधर्म पालन नहीं किया था, वो तो स्वधर्म पालन करने के लिए भी इसके चाह रहा था, वो तो कह रहा था मैं जंगल चला जाऊंगा युद्ध क्यों करूंगा, उसका क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, स्वधर्म युद्ध करना।
हाँ।
लेकिन वो तो छोड़ के जा रहे थे, लेकिन तो भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं इसलिए करो, तुम जीतना और हारने के बारे में सोच मत। हाँ, मैं कह रहा हूं युद्ध करो। हाँ, वो हानि लाभ के मत सोचो, मैं कह रहा हूं उसको करो। तो उन्होंने भगवान के निर्देशन का पालन करते हुए कार्य किए, इसलिए वो भगवत कर्म किए, वो अपने इच्छा से कर्म नहीं किए थे। वो अपने इच्छा से करते तो फिर युद्ध नहीं होता था, वो चले जाते।
हाँ प्रभु जी, पर पशुओं का क्या होगा, वो तो स्वधर्म के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब उसी में घूमते रहेंगे वो।
तो वो पशुओं के लिए है, वो अपने स्वधर्म को पालन करते धीरे धीरे आ जाएंगे, वो हमारे लिए लागू नहीं होता है। लेकिन वो जो पशु स्तर में है, जो पशु स्तर के मनुष्य है, उनका अपना धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, जितने भी धर्म का नियम बताया गया, स्वधर्म बताया गया, तो वो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या जो कर्म अर्पित नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। वो इस प्रकार से वो धीरे धीरे प्रगति करके वो कृष्ण भक्ति तक आ सकते हैं, तो उनके लिए वो स्वधर्म है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, कंथरा श्रीमद भागवतम की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।